ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेन्मुदीरये नष्टप्रायेषु अवधेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। ॐ अनन्तवरन्धस्य ज्ञानाञ्जनचक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपरमं श्रीगुरुर्वैष्णवाश्च श्रीरूपं सर्वजातं सहितं रघुनाथान्वितं गङ्गजीव सार्वद्वैतं सार्वभूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सहितं हरिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण कमलसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतृश्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नमः। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आचार्य देशकारिणी। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 50 लंगड़ा आदमी और अंधा आदमी। 1975 में बीबीटी की भारी सफलता के बाद से प्रभुपाद प्रेस ने प्रभुपाद के लेखन का साथ बराबर बनाए रखा था। प्रभुपाद उनके प्रेस और पुस्तक मित्रों के मध्य एक प्रकार की मधुर दिव्य प्रतिस्पर्धा विकसित हो गई थी। नवंबर 1975 में प्रभुपाद ने पुस्तक मित्रों को लिखा था, बीबीटी कहता है कि मेरे अनुवाद करने की गति से प्रकाशन कर रहा है और आप प्रकाशन की गति से वितरण करेंगे, ये बहुत अच्छा है, किंतु मैं अपने अनुवाद कार्य में अभी आ गए हूँ। अब उन्हें श्रीमद् भागवत का 6ठा स्कंध मुझे भेजना चाहिए, मैं 7वें स्कंध पर कार्य करना आरंभ कर चुका हूँ। वस्तुतः श्री प्रभुपाद के लिखित कार्य का वर्णन करने के लिए अनुवाद करना शब्द अधूरा है। अनुवाद में केवल श्लोक और पर्याय सम्मिलित थे, किंतु प्रभुपाद के गहनतम चिंतन जिन्हें वे अपनी व्यक्तिगत आनंद अनुभूतियां कहते थे उनके तात्पर्य थे। तात्पर्यों की रचना तथा श्लोकों का अनुवाद तो सर्वोत्तम होता था जब उनके विषय में दिन भर सोचते रहते थे, ना कि ठीक तब जब वह 1 बजे रात में शुद्ध लेखन मशीन चला देते थे। वे अत्यंत गहन तथा जटिल वैदिक ज्ञान का अनुवाद आधुनिक संदर्भ में कर रहे थे, जिससे वे पाश्चात्य पाठकों के लिए बोधगम्य बन सके, और यह महान कठिन कार्य था। प्रभुपाद के लेखन कार्य का वर्णन करने के लिए अनुवाद करना शब्द अधूरा है। अगर आप भागवतम का दूसरे कई पब्लिशर हैं उनका जब देखते हैं बुक, उसमें जो है केवल श्लोक के आगे उसका हिंदी में अर्थ लिखा हुआ, एक एक शब्द का ब्रेक करके उसका अर्थ उनमें आपको नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे श्लोक का एक हिंदी में ट्रांसलेशन लिखा मिलेगा। यहां प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, तो इस पैराग्राफ से जो है क्लियर होता है कि श्लोक का शब्द अर्थ अर्थात एक एक शब्द का अर्थ। अच्छा, अब मजे की बात क्या है कि आप अगर भागवतम पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, और अगर आप जो श्लोकों के शब्दों के अर्थ हैं अगर उनको अलग से लिख लें और जो प्रभुपाद ने उसका ट्रांसलेशन दिया है उसको पढ़ें तो आपको अलग लगेगा। इट इज डिफरेंट। लिटरेरी ट्रांसलेशन न करके प्रभुपाद ने भावनात्मक ट्रांसलेशन किया है, तो भाव भरा भक्ति का, उसके अंदर जो उनके मन के अंदर विचार उठते थे, जो उसका एक्सप्लेनेशन है, जो उसका तात्पर्य है, उस तात्पर्य का भाव जो है प्रभुपाद ने उस शब्द उस ट्रांसलेशन में उस अनुवाद में शब्दार्थ से कई बार अलग रखा है, अलग भर दिया है, जिससे कि समझने में आसानी हो जाए। इस बात के बारे में यहां लिख रहे हैं ससुरदास गोस्वामी कि कई बार ऐसा होता है कि एक विद्वान है हिंदी का, संस्कृत का पीएचडी है, डीफिल है, एमफिल है, विद्वान है, उससे आप कहेंगे कि इस श्लोक का जो है ट्रांसलेशन करना है, तो एक मिनट में उसके शब्द पकड़ेगा और शब्दों के अर्थ जो कि शब्दकोश में, जो शब्दकोश में डिक्शनरी में मिलेंगे उनको बताता जाएगा और अनुवाद हो जाएगा। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि दिन भर सोचना कि आज मुझे कौन कौन से श्लोक करने हैं, कितने श्लोक करने हैं, कहां से करने हैं, उन सब के बारे में प्रभुपाद जो है दिन भर सोचते रहते थे। और सोचने में उनको जो आनंद की अनुभूति होती थी, जो उनके अंदर से आवाज निकलती थी, उसको रात में 1 बजे बैठ के अपने डिक्टाफोन के ऊपर वो रिकॉर्ड करते थे और लिखते थे। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो तात्पर्य आए हैं या ट्रांसलेशन आए हैं मैंने नहीं लिखे हैं, नॉट रिटन बाय मी। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है। अगर भगवद गीता पढ़ेंगे तो लिखा होगा समर्पित है किसको, श्री बलदेव विद्याभूषण को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, बहुत सारी जगह से उन्होंने जो है इसको बड़ा चिंतन किया। और पढ़ने के बाद कई बार होता है कि मैंने वहां से पढ़ा है, मैंने एक लाइन लिख ली, उसकी एक लाइन ले ली, वहां से पढ़ा एक लाइन उसकी ले ली, वहां से पढ़ा एक लाइन उसकी ले ली, चलो मेरा अनुवाद मेरा तात्पर्य तैयार होता है। नहीं, ऐसा नहीं। प्रभाव देते हैं कि ये साक्षात कृष्ण जो है उन्होंने मुझसे लिखवाया है। आनंद अतिरिक्त, जो आनंद अतिरिक्त की बात हो रही है इसके अंदर, इस शब्द में इस्तेमाल हुआ है कि आनंद की अनुभूति होती है, मतलब लिखते समय जो है उनकी लेखनी पे स्वयं कृष्ण विराजमान है, और जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसा प्रभुपाद ने लिखा है, उसी भाव में लिखा है। प्रभुपाद के अपने वर्ड्स हैं कि ये अनुवाद मेरे नहीं है, ये मुझसे भगवान कृष्ण ने साक्षात लिखवाया है, मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा भरी है, मेरे अंदर ऐसा ज्ञान दिया है, मेरे अंदर ऐसा भावार्थ दिया है कि मैंने जो ट्रांसलेशंस करी हैं वो सब उनके द्वारा कराई गई हैं, मेरा अपना इसमें कोई भी योगदान नहीं। श्रीमद् भागवत के लेखन के माध्यम से संसार भर के लोगों से वार्तालाप करने के लिए श्री प्रभुपाद को बहुत अनुकूल परिस्थिति की आवश्यकता थी, इसलिए मायापुर उत्सव के बाद उन्होंने यात्रा का ऐसा कार्यक्रम मनाया जिससे वे 1 महीने में हवाई पहुंच जाए। वहां उन्हें आशा थी उनके साहित्य कार्य के लिए समुचित वातावरण मिलेगा। उनके यात्रा सचिव पुष्ट कृष्ण ने मायापुर उत्सव के बाद से ही अकल सूचना देते हुए लिखा, प्रभुपाद को बहुत अधिक अनुवाद कार्य करना है, इसलिए बाहर का कोई कार्यक्रम तय न कीजिए, यदि अतिथियों को आना है तो केवल 5 बजे से लेकर 6:30 बजे शाम तक आए। यदि ऐसी व्यवस्था ढंग से हो जाती है तो प्रभुपाद वहां लेखन कार्य के लिए कुछ समय रुकेंगे। हवाई एक छोटी सी कंट्री है या ये अमेरिका का पार्ट है, होनोलुलु हवाई जो है सेपरेट आइलैंड है, तो वहां पर जो है प्रभुपाद जाके जो है अपना शांत वातावरण के अंदर ट्रांसलेशंस करना चाहते हैं, क्योंकि जब लोग मिलने आएंगे कभी कार की आवाज आ गई, कभी गाड़ी की आवाज आ गई तो डिस्टर्बेंस होती है, उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। तो यहां जो है प्रभुपाद कहते हैं कि यात्रा के कार्यक्रम में संयुक्त राज्य का दूसरा परिभ्रमण सम्मिलित था, इसलिए उनके सचिव ने न्यू वृंदावन में कीर्तानंद स्वामी को पहले ही लिख दिया था। प्रभुपाद ने कुछ और बातें भी व्यक्त की हैं, उन्होंने कहा है समय बीतने के साथ अब उनकी रुचि कम से कम आगंतुकों से मिलने में रह गई है। उन्होंने उल्लेख किया कि महर्षि अरविंद दर्शनार्थियों से वर्ष भर में केवल एक दिन अपने जन्म दिवस पर मिलते थे, यद्यपि प्रभुपाद का विचार है अब ऐसा करना संभव नहीं है, तथापि मैंने उनसे पूछा कि वे अनुवाद कार्य करने के लिए कुछ समय कहाँ जाकर रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा न्यू वृंदावन, वहां से वे न्यूयॉर्क की रथ यात्रा के बाद जाना चाहेंगे। न्यू वृंदावन का साइज क्या है? ये तो 84 कोस का है ना, अपना वृंदावन 84 कोस की परिक्रमा है ना, न्यू वृंदावन कितने एकड़ में बना हुआ है? साढ़े 3,000 एकड़ में है, फॉरेस्ट है पूरा। वहां क्यों प्रेफर कर रहे हैं कि इतनी बड़ी जगह पे बाहर के लोग जो हैं वो उनको बहुत ड्राइव करना पड़ेगा, बहुत चलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आने में अवॉइडेंस करेंगे, अवॉइड करेंगे, आएंगे नहीं, इसलिए मुझे शांत वातावरण मिल जाएगा, आई विल बी कंफर्टेबल। हवाई मई 3, 1976, भारत के कई नगरों की संक्षिप्त यात्राओं के बाद और मेलबोर्न, ऑकलैंड तथा फिजी में थोड़ा थोड़ा समय रुकते हुए श्री प्रभुपाद निर्धारित समय पर हवाई पहुंच गए। फिर तुरंत अपने लेखन कार्य की वृद्धि करने में लग गए। भक्त उत्सुकतापूर्वक उनके शुद्ध लेखन यंत्र पर अंक सूचक संख्या हर रात देखते थे, जो उनके लिए एक प्रकार से मानवता के लिए प्रभुपाद के आशीर्वाद का माप था। प्रतिदिन भारत में भी प्रतिदिन सामान्यतः 100 अंकों से आगे नहीं जाते थे और कभी कभी कुछ भी नहीं करते थे। हवाई में उनकी गति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और 200 से आगे जाके 300 अंकों तक पहुंच गई थी। हरी शौरी ने, जो वृंदावन में उनके सेवक के रूप में हाथ गया था, अपनी डायरी में लिखा, प्रभुपाद अनुवाद कार्य बड़ी तेज गति से कर रहे हैं, पिछली रात में 290 अंक पर पहुंच गए। इस कितने उन्होंने श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य लिख दिया है, यू कैन इमेजिन कि कितना सोचा होगा। हमें तो एक श्लोक एक घंटे में करते हैं, कितने श्लोक करते हैं आप? एक श्लोक एक घंटे में। प्रभुपाद की जो स्पीड है, जो उनका मंचन है, जो मंथन है, जो उनका स्मरण है, कितना तेज है कि वो एक रात के अंदर जो है 290 अंक पर पहुंच गए। मंदिर का पड़ोस बहुत शांत था, कई एकड़ की बगीचा नुमा संपत्ति उससे संलग्न थी। मंदिर के पीछे एक विशाल शानदार बरगद का वृक्ष था और उसके सामने विस्तृत तुलसी की झाड़ियां थी, इतनी विस्तृत जितनी इस्कॉन में कहीं नहीं थी। भक्त अपनी सब्जियां, फूल और आम स्वयं पैदा करते थे और नारियल तो इतनी अतिशयता से होता था कि वह निःशुल्क मिलता था, फ्री। आज नारियल जो है उसका क्या सिस्टम चल रहा है, कितने का है? 50 से 100 रुपए के बीच में एक नारियल। हमें याद है हम जो मायापुर गए थे 98 के अंदर, तो 5 रुपए में मिलता था, आवाज लगा जाके बोलता था 5 रुपए मिलता था, और यहाँ पे जो है निशुल्क फ्री की बात हो रही। मौसम खुली धूप का था, कभी कभी वर्षा हो जाती थी। श्री प्रभुपाद बीमार पड़ गए, वह रात में 1.5 घंटे और दिन में 1 या 2 घंटे से अधिक नहीं सो सकते थे, किंतु वे दिव्य थे। इसलिए सोच सकने की अपनी असमर्थता का उपयोग उन्होंने अन्य तरीके के तौर पर लेखन के समय में वृद्धि करके किया। लेखन को इतना बल देने के बावजूद, ध्यान से सुनने की बात है, लेखन को इतना बल देने के बावजूद मंदिर में व्याख्यान देने, सवेरे भ्रमण करने, सागर तट पर विचार वार्ता करने और प्रतिदिन के पत्रों का उत्तर देने का उनका कार्यक्रम जारी रहा। ये कंटिन्यूड है राइटिंग के अलावा। तब भी हवाई कलकत्ता या वृंदावन से बहुत भिन्न था, जहां पुराने मित्र और नए प्रशंसक घंटों उनका समय ले लेते थे। यहां अपने प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ वे अधिकतर अकेले थे। वे होनोलुलु में लगभग एक सप्ताह रहे होंगे, जब एक दिन प्रातःकाल मेका की तरफ घूमते हुए उन्होंने घोषणा की कि उस रात वे सातवें स्कंद का अंतिम तात्पर्य पूरा कर लेंगे। तब हरीशौरी ने सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की तो प्रभुपाद बोले, अरे मैं तो इसे बहुत शीघ्र समाप्त कर सकता हूं, किंतु मुझे तो तुम लोगों को समझाने के लिए लिखना पड़ा था। यहां जो एक बात उठ के आ रही है, प्रभुपाद के माइंड में क्या था कि जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं जिनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, अगर वो इसे पढ़ें तो उन्हें ऐसा ना लगे कि उनके सर के ऊपर से निकल गया। इट शुड बी सो सिंपल दैट एवरीबडी कैन ग्रैब इट, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट, हर व्यक्ति जो है इसको समझ पाए। रात में करीब 9 बजे प्रभुपाद ने हरीशौरी को बुलाया और कहा कि वे शाम की मालिश नहीं कराएंगे, वे सातवें स्कंद को पूरा करने के लिए समय चाहते थे। दरवाजा बंद करके वे अपने डेस्क के सामने बैठ गए और पूरी रात 5 बजे सवेरे तक कार्य करते रहे। सातवें स्कंद के अंत में उन्होंने एक समापन टिप्पणी लिखवाई। टिप्पणी क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौर भक्त वृंद की कृपा से न्यू नवद्वीप होनोलुलु में पंचतत्व मंदिर में वैशाख शुक्ला एकादशी के तदानुसार 10 मई 1976 ईस्वी को संपूर्ण हुआ। अतः हम आनंद पूर्वक कीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसके तुरंत बाद श्री गुरुपाल ने 8वें स्कंद में हाथ लगाया। इसका शुभारंभ इस प्रार्थना से किया, सर्वप्रथम मैं अपने गुरु कृष्ण कृपा मुक्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरण कमलों में अपना सादर विनीत प्रणाम अर्पित करता हूं। प्रभुपाद ने लिखा कि उनके गुरु महाराज ने 1935 ईस्वी में राधा कुंड में उन्हें आदेश दिया था कि मंदिर निर्माण की अपेक्षा पुस्तक लेखन पर अधिक बल दें। उन्होंने गुरु महाराज के आदेश का पालन करते हुए सर्वप्रथम 1944 ईस्वी में बैक टू गॉडहेड नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था और 1958 में श्रीमद् भागवत शुरू किया था। जो ही भारत में उन्होंने श्रीमद् भागवत के 3 खंड प्रकाशित कर दिए, त्यों ही 1965 में वे अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। जैसा कि मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया था, मैं निरंतर पुस्तकें प्रकाशित करने का प्रयत्न करता रहा हूं। अब 1976 में मैंने श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद पूरा कर लिया है और 10वें स्कंद का सारांश कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के नाम से प्रकाशित हो चुका है। 8वां, 9वां, 10वां स्कंद, 11वां स्कंद, 12वां स्कंद प्रकाशित होने अब भी शेष हैं। इसलिए इस अवसर पर मैं अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्य को पूरा करने की मुझे शक्ति दें। मैं ना तो कोई महान विद्वान हूं ना महान भक्त हूं, मैं अपने गुरु महाराज का केवल एक तुच्छ सेवक हूं और अमेरिका के अपने शिष्यों के सहयोग से मैं अपनी पूरी योग्यता लगाकर इन पुस्तकों के प्रकाशन से गुरु महाराज को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सौभाग्य से संसार भर के विद्वान इन प्रकाशनों की सराहना कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत के अधिक से अधिक खंडों को प्रकाशित करके श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रसन्न करें। शो करता है कि प्रभुपाद का अपने गुरु के प्रति क्या भाव था, क्या मूड था। उन्होंने गुरु की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपना पूरा जीवन उसमें समर्पित कर दिया। श्री प्रभुपाद ने कहा, श्रीमद् भागवत को सामान्य व्यक्तियों के लिए सुबोध बना रहे हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनके लेखनों में सार तत्व का अभाव है। प्रत्येक सार ही सार है, किंतु स्वयं भागवत की सारभूत भावना के अनुरूप प्रभुपाद उन सभी बातों का बहिष्कार कर रहे थे जो असंगत तथा चित्त विक्षेपक थे। सार ही सार है, अर्थात जो ट्रांसलेशन है, जो उन्होंने उसके बाद अनुवाद लिखे हैं, उसमें जो भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव है वो इग्नोर नहीं हुआ है, उसको उन्होंने साइड में नहीं रख दिया कि चलो दो शब्दार्थ करके मैं उसका मीनिंग लिख दूं बात चल जाए। उन्होंने कहा कि जो चीजें असंगत हैं, जो भक्ति से कनेक्ट नहीं करती है, वो मुझे नहीं लिखनी है। मुझे वही चीजें लिखनी हैं जो कि आपको भक्ति के साथ जोड़ दे। इसलिए जो है उनका भागवतम आज वर्ल्ड में नंबर वन गिना जाता है, उसका कोई मैच नहीं है, इज नो मैच टू इट। कितने भी ट्रांसलेशन आ जाए, कितने भी व्याख्याएं आ जाए, जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा वेल रेड भागवतम ट्रांसलेशन किसका है, सबसे ज्यादा भगवत गीता किसकी पढ़ी जाती है, कितने डिस्ट्रीब्यूशन करी थी प्रभु जी लास्ट ईयर, टू पॉइंट फाइव लैक्स। इस बार कितने का मूड है, थ्री, टू पॉइंट फाइव की थ्री, मोर देन टू पॉइंट फाइव, कहने में है अढ़ाई लाख, कहना अढ़ाई लाख। जरा यहां सामने आंगन में रख के दिखाइए कितना ढेर बनेगा, यहां रखिए, जरा रख के देखिए, ये आंगन में आएंगी नहीं, आंगन में पहुंचेगी नहीं, छोटा बढ़ जाएगा, बहुत होती है। एक डिब्बे में कितनी होती है, 32। अब सोचिए अढ़ाई लाख भगवद गीता के लिए कितने डिब्बे रह गए होंगे, इमेजिन करिए। तो भक्तों का ये जो प्रयास है, ये प्रभुपाद के प्रति उनका समर्पण है, ये उनका जो है डेडिकेशन है श्री प्रभुपाद के प्रति, कि उन्होंने जो है भगवद गीता भागवतम उनकी अपनी जो बुक्स हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही बड़ा एक जिसे कहते हैं हिंदी में ठेका ले लिया है, इसको बांटना है, बांटना है, बांटना है, इतना बांटना है कि गिनती ना हो सके। आज तो 2.5 लाख गिन दिया है, फ्यूचर में इतना बांट देना है, इतना बढ़ जाएगा कि इसकी गिनती करनी मुश्किल हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही उसके प्रणेता श्री व्यासदेव कहते हैं कि भागवत भौतिक कामनाओं से प्रेरित सभी धार्मिकता से बचकर केवल शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश देता है। वे अपने पूर्व आचार्यों की टीकाओं से ऐसी बातें ग्रहण कर रहे थे जो पाठक के मन को शुद्ध भक्ति की ओर आकृष्ट करे। अतः श्रीमद् भागवत को वैदिक ज्ञान के वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाता है। जिस प्रकार स्वयं भागवत सारभूत आध्यात्मिक ज्ञान है, उसी प्रकार भागवत का अनुवाद और उसकी टीका करने में श्री प्रभुपाद ने बिना किसी ऊहापोह या विचलन के शुद्ध संदेश देने की भावना से काम किया है। इस व्हाट आई वाज टेलिंग यू, जो ट्रांसलेशन है उनके अनुवाद है ऐसे हैं कि आपको अट्रैक्ट करते हैं और किसकी ओर ले जाते हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति की ओर। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि जब आप शुद्ध भक्ति की ओर आकृष्ट होते हो तो जो कि आपने भागवत पढ़ा है, आपने भगवद गीता पढ़ी है, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़े हैं, तो फिर आपके विचलित होने की, डिस्ट्रैक्ट होने की, डिस्टर्ब होने की, उससे अलग होने की संभावना जो है बहुत ही मिनिमल हो जाती है, ऑलमोस्ट ऑल जीरो हो जाती है। फिर आप भटकते नहीं, आप उस पर लगे रहते हो। आगे लिखते हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परमेश्वर भगवान कृष्ण है, वे सभी अवतारों के स्रोत, सभी कारणों के कारण है, और प्रभुपाद ने यह निष्कर्ष प्रत्येक पृष्ठ पर उद्घाटित किया। मैं इसमें एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा गुरु महाराज की। '97 की बात है, हम वेस्ट दिल्ली में पहला प्रोग्राम नामहट शुरू करना चाहते थे, तो महाराज से बात हुई, तो महाराज ने कहा कि आप ना कभी भी प्रोग्राम शुरू करो, प्रोग्राम भगवद गीता का ही करना और कुछ नहीं। रीजन बताया उन्होंने कि भगवद गीता में कोई भक्त वो शुरू से सुनने आ रहा है या महीने बाद सुनने आ रहा है, स्टार्ट किया है 6 महीने बाद स्टार्ट किया है, 1 साल के बाद स्टार्ट किया है, उसको लगेगा कि बिगिनिंग से ही हुआ, क्योंकि तो प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण के बारे में ऑलमोस्ट ऑल हर तात्पर्य में मिलेगा, देहात्म बुद्धि के बारे में हर तात्पर्य में मिलेगा। अब पढ़ के देखिए कहीं ना कहीं एक दो पहले में नहीं तो अगले श्लोक में मिल जाएगा आपको जो है, देहात्म बुद्धि के बारे में चर्चा होगी, भौतिक संसार के बारे में चर्चा होगी, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा होगी, उनके तात्पर्य में ऑलमोस्ट ऑल चीजें मिल जाएंगी। और बिगिनर के लिए इन्हीं चीजों को जानना है, दे हैव टू नो दिस थिंग। इसलिए महाराज कहते हैं कि आप जो है जब पढ़ेंगे इसको तो भगवद गीता प्रभुपाद की कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे, नया भक्त जो ज्वाइन कर रहा है आपको उसको लगेगा कि आज बिल्कुल आज से भगवद गीता शुरू हुई है, और महीने 15 दिन में जब क्लासेज में आएगा तो बिल्कुल अक्रॉस भगवद गीता के जो पहले चैप्टर हो चुके हैं उनको समझ में आने शुरू हो जाए, घर में पढ़ेगा तो समझ में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी श्लोक में चर्चा करेंगे तो भगवान की सेवा, भगवान के प्रति आकर्षण, थोड़ा सा भौतिक संसार, देहात्म बुद्धि, इनकी चर्चा हो रही है। तो यहाँ वही बात कही गई है कि यह निष्कर्ष प्रत्येक पृष्ठ पर उद्घाटित किया है। यद्यपि संस्कृत के कुछ विद्वान श्री प्रभुपाद द्वारा कृष्ण पर अधिक बल दिए जाने से असहमत है कि आपने भगवान कृष्ण पर इतना बल क्यों दिया, किंतु प्रभुपाद का संस्कृत को कृष्ण में बनाना कुछ सनक नहीं है, वर्णन प्राचीन परंपरा के सर्वथा अनुरूप है। विश्वविद्यालय के जिन विद्वानों ने गंभीरता पूर्वक श्री प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन किया है वे उन्होंने उनके परंपरा निर्वाह के श्रद्धापूर्ण गुण की सराहना की है, सारे संसार से समीक्षाएं प्राप्त हुई। समीक्षा आ रही है, जिन लोगों की संस्कृत भाषा तक पहुंच नहीं है उनको ये पुस्तकें बड़े उत्तम ढंग से भागवत का संदेश पहुंचाती हैं। डॉक्टर अलक हैजे संस्कृत तथा भारतीय अध्ययन विभाग हार्वर्ड विश्वविद्यालय। सेकंड, यह गहराई से अनुभूत सुविचारित और सुंदरता पूर्वक अभिव्यक्त कृति है। मेरी समझ में नहीं आता कि भगवद गीता के अनुवाद की प्रशंसा करूं या इसकी व्याख्या की निर्भीक विधि की प्रशंसा करूं अथवा इसके विचारों की अंतहीन उर्वरता की प्रशंसा करूं। मैंने ऐसी महत्वपूर्ण वाणी और शैली में गीता के विषय में कोई दूसरी कृति नहीं देखी है। यह भविष्य में दीर्घकाल तक आधुनिक मानव के बौद्धिक तथा नैतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती रहेगी। डॉक्टर शालिग्राम शुक्ल, प्रोफेसर भाषा विज्ञान, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय। तीसरी, पहली बार हमें इस महान धार्मिक वरेण्य ग्रंथ का सहज ही प्राप्त संस्करण उपलब्ध हुआ है जिससे भारतीय साहित्य के विद्वानों तथा कृष्ण भावना भावित परंपरा के अनुगामियों को समान रूप से अवसर प्राप्त होगा कि वे मूल पाठ की तुलना में आधुनिक अंग्रेजी अनुवाद से कर सकें और शिव भक्ति वेदांत की इस विद्वतापूर्ण टीका के माध्यम से इस स्थिति के गंभीर आध्यात्मिक अर्थ से परिचित हो सके। जो भी इस टीका को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा वह समझ जाएगा कि अपनी अन्य कृतियों की तरह यहां भी श्री भक्ति वेदांत ने उत्कट भक्ति और भक्त की सौंदर्यात्मक भावुकता एवं पाठवित के भौतिक क्षम का स्वस्थ मिश्रण एक साथ किया है। लेखक ने कहीं भी मूल अभिप्रेत अर्थ को सैद्धांतिक वाद विशेष को बढ़ावा देने के विचार से ओझल नहीं होने दिया। इस सुंदर ढंग से लिखे हुए खंड उन सभी पुरुषों के पुस्तकालयों की शोभा की वृद्धि करेंगे जो भारतीय अध्यात्म तथा धार्मिक साहित्य को पढ़ने के लिए कृत संकल्प है, चाहे उनकी रुचियां विद्वान की प्रेरणा से उत्पन्न हुई हों, भक्त की प्रेरणा से जगी हों या सामान्य पाठक की प्रेरणा से उद्वेलित हों। डॉक्टर जे ब्रूस लॉन्ग, एशियाई अध्ययन विभाग, कार्नेल विश्वविद्यालय। चौथा, श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनुदित यह अंग्रेजी संस्करण अनुपम है। इसमें मूल संस्कृत और बांग्ला श्लोकों के अंग्रेजी लिप्यांतरण, पर्यायवाची अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य दिए गए हैं जो सहज लेखक के तद विषय प्रकांड पांडित्य के प्रमाण है। डॉक्टर ओ बी एल कपूर, एमरेटस अध्यक्ष एवं प्राचार्य, दर्शन शास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भारत। ये जो लास्ट वाली उन्होंने लिखी है, ओ बी एल कपूर, अब बिहारी लाल कपूर, ये प्रभुपाद के बहुत ही गहरे मित्र थे, वेरी डियर फ्रेंड। ये मन समझ लिया गया कि भारतवर्ष में जब प्रभुपाद आए, जब अमेरिका से इस्कॉन की संस्थापना करके श्री प्रभुपाद जब पहली बार इंडिया में आते हैं, तब वो जो है मिलते हैं ओ बी एल कपूर से, सबसे पहले ओ बी एल कपूर से मिलते हैं। मुझे भी ये ज्ञान नहीं था, आई डिडंट हैव नॉलेज अबाउट ऑल दिस, पर 98 या 99 की बात है जब भक्तिचारू महाराज जो है शूटिंग करने आए, तो किसी ने मेरा उनसे इंट्रोडक्शन कराया। मैं तो पहले उनको जानता नहीं था। Somebody introduced me to Bhakti Charu Swami. तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ओ बी एल कपूर का रोल प्ले करोगे? तो मैंने कहा मुझे तो जानता नहीं ओ बी एल कपूर क्या है। Then he asked me to read the books. तो मैंने पढ़ा, तो उनका जो फर्स्ट मीटिंग है वो मदन मोहन जी के मंदिर के अंदर वृंदावन में जो है, ओ बी एल कपूर जो है उनका स्वागत कर रहे हैं, प्रभुपाद आ रहे हैं एंड उनका स्वागत जो है वो ओ बी एल कपूर कर रहे हैं मदन मोहन मंदिर, मदन जो नया मदन मोहन है उसके प्रांगण में। पुराना मदन मोहन तो ऊपर चढ़ गया सीढ़ी के ऊपर, जो नए मदन मोहन का मंदिर का जो सामने वाला ओपन एरिया है, प्रांगण जिसे कहते हैं, उसके अंदर। आई स्टिल रिमेम्बर कि हालांकि जिसको मैंने गले लगाया ओ बी एल कपूर बन के, वो एक्चुअली श्री प्रभुपाद नहीं थे, परंतु जो उनका रोल प्ले कर रहे थे, जिनकी शक्ल उनसे मिलती थी, उनसे जब गले मिला तब भी ऐसी एक गजब की अनुभूति हुई, एक ऐसा फील आया कि तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इट कांट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। हालांकि वो सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए था, जो गले मिलना था उनसे वो सिर्फ 30 सेकेंड का खेल था, ओनली 30 सेकेंड्स, पर इट वॉज वंडरफुल। मैं इस बात के लिए बड़ा अनुग्रहित हूँ भक्ति चारु स्वामी महाराज का कि ही चोज माई हाउस फॉर शूटिंग। मेरे घर में शूटिंग हुआ तो वो बात आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे आएंगे तो ओ बी एल कपूर और कुछ फ्रेंड्स मिलके बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। जिनको मालूम होगा छोटा भाव है बहुत, ही वॉज वेरी स्मॉल, उन दिनों की बात है, आज से कितने साल हो गए होंगे, 99 में 17 साल, 17 ईयर्स बाद। तो हम लोग बैठे जो है अपने मेरे ड्राइंग रूम के अंदर जो है बैठे शूटिंग हो रही है और बहुत बड़ा स्टाफ आया हुआ है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे बैक टू गॉडहेड की चर्चा आ रही है, तो बैक टू गॉडहेड में जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए सेल करते हुए इंडिया गेट के पास श्री प्रभुपाद बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अगर आप पढ़ेंगे आपको लेख मिलेगा, श्री प्रभुपाद बेहोश हो जाते हैं। देन ही इज टेकन टू ए डॉक्टर्स प्लेस, तो वो मेरे नर्सिंग होम में ही उसका शूटिंग हुआ है। तो मैं उसको बहुत आज भी मेरी मेमोरी में है। इतना एक समझिए कि प्रभुपाद से जुड़ने का एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा फील है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है कि ये सर वाज़ अ पार्ट ऑफ इट, वाज़ अ पार्ट ऑफ दैट थिंग। और जब इसको पढ़ते हैं तो प्रभुपाद से जुड़ते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि श्री प्रभुपाद लीलामृत को चाहे 10 मिनट पढ़े, पढ़िएगा जरूर, उससे आपका जो है जुड़ाव। भगवत गीता पढ़नी है, भागवत पढ़ना है, संचितामृत पढ़नी है और ग्रंथ भी पढ़ने हैं, परंतु ये ग्रंथ भी जब पढ़ते हैं ना तो प्रभुपाद से ऐसा जुड़ाव महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है जैसे प्रभुपाद जो है आपको पर्सनल तौर पे आके शाबाशी दे रहे हैं, आपका पीठ थपथपा रहे हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रख रहे हैं। और आपको जो उनकी मेहनत है, जो उनका जो एफर्ट है, वो जब इसको पढ़ने के बाद अप्रिशिएट करते हैं तो उसका भाव ही कुछ और हो जाता है। मतलब दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। कई बार जो है पढ़ते पढ़ते सोचते सोचते इसके बारे में टीयर्स आ जाते हैं। खासतौर पर जब पार्ट वन पढ़ेंगे, उसकी जो बिगनिंग है, इसमें एक लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन जो पार्ट है वो, और उसके बाद दूसरा पार्ट है प्लांटिंग द सीड। दो पार्ट है ना पहले, तो अब तो एक बुक आ गई है, पहले दो पार्ट 6 पार्ट्स में हुआ करती थी। क्योंकि पहले दो पार्ट है जिसमें कि लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन में प्लांटिंग द सीड, वो व्यक्ति की आंखों में आंसू ला देते हैं, गला रुक जाता है, आंसू आ जाते हैं कि हाउ मच हार्ड एफर्ट ही हैड डन एंड व्हाट वी आर डूइंग एंजॉयिंग इट। अब क्या कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ते हैं, बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी मिलती है, समझ में आती है बातें, भक्ति में जुड़ते हैं। उस हमको भक्ति में जोड़ने के पीछे, इन ग्रंथों के पीछे कितनी मेहनत है, कितने एफर्ट्स हैं, कितना त्याग है, कितनी तपस्या है, इसको सोच सोच के जो है आपकी आंखों में आंसू आ जाए। इट इज ए बुक वन शुड रीड। चाहे 10 मिनट निकाले रोज के, 15 मिनट निकाले, किसी टाइम भी निकाले, एक पन्ना पढ़े, दो पन्ने पढ़े, पर पढ़ेंगे ना तो आपको एक अतीव आनंद की अनुभूति होगी। दैट आनंद कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स, उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इसके बाद बहुत बढ़िया बातें आ रही है। वैदिक साहित्य में अध्यात्म के अनेक मार्गों और योग के अनेक रूपों का उल्लेख है। यदि टीकाकार द्वारा उच्चतम वैदिक निष्कर्ष अनुभूत नहीं है तो भागवत का वास्तविक संदेश देने में वे आसानी से चूक कर सकता है। सचमुच मायावादी टीकाकारों ने भागवत को अपने सम्मान के समर्थन में नियोजित करने का प्रयत्न किया है कि जीवात्मा और ब्रह्म में तात्म्य है, यद्यपि इससे श्रीमद् भागवत के उद्देश्य का खंडन होता है। वैदिक साहित्य के टीकाकार के रूप में वैष्णव विद्वानों में श्री प्रभुपाद सुविख्यात थे, क्योंकि वे श्री चैतन्य महाप्रभु की गुरु शिष्य परंपरा में थे, जो पतित पावन के रूप में महिमा मंडित है। भगवान चैतन्य के एक अनुयायी और अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में श्री प्रभुपाद पतित आत्माओं का उद्धार का और उन्हें मौलिक कृष्ण भावनामृत में लाने की परंपरा का संपादन निष्ठापूर्वक पूरी तरह से कर रहे थे। आज हम किसी से बात करते हैं ना, आप पढ़ते हो, हाँ मैं टीवी देख लेता हूं, सुन लेता हूं, पढ़ता नहीं हूं, रीडिंग नहीं करता। मैं टीवी देख लेता हूं, उसमें सुन लेता हूं। क्या सुन लेते हो? बड़े बड़े महात्मा बोलते हैं, बड़े बड़े विद्वानों की वाणी आती है, मैं तो उनको सुन लेता हूं। अच्छा, ये बताओ भगवान कौन है? एक ज्योति, तुरंत आंसर आएगा, एक नूर, एक प्रकाश, एक रोशनी का पुंज। भगवान कौन है? बिंदु। अरे तूने इतना सुना, इतना सुनने के बाद क्या निष्कर्ष निकला कि भगवान एक बिंदु है, भगवान एक ज्योति है, भगवान एक निष्कर्ष। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इनके अंदर कुछ ना एजुकेटिव प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उन प्रोग्राम्स के अंदर जो है आपको डिफरेंट 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 जो हमारे कल्ट हैं उनके गुरु जो वहां पे मिले। अभी मीटिंग हुई पीछे, अभी पीछे की मीटिंग हुई दिल्ली में, उसमें बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, मुसलमानों का है, क्रिश्चियंस का है, बौद्धों का है, जैनियों का है, प्लस हिंदुओं का, ब्रह्म कुमारी वगैरह, बहुत बहुत सारे निष्कर्ष। अभी न्यूज़पेपर रिपोर्ट था तो उसमें निष्कर्ष क्या निकाला कि भगवान एक है, एवरीबडी से गॉड इज वन, अर्थात सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। तो क्वेश्चन ये हुआ कि सबका मालिक एक है तो वो कौन है? वो एक एक मालिक, मालिक है तो मालिक होना चाहिए ना, तो मालिक की कोई शक्ल सूरत फॉर्म कुछ तो होनी चाहिए, मालिक है नहीं। तो आंसर क्या है कि वो एक ज्योति है। मैं आपको पेपर का कटे प्रेजेंट कर सकता हूं, स्पष्ट लिखा हुआ है वो एक ज्योति है, वो एक रोशनी का पुंज है, बस। तो भगवान जो जो मालिक है वो ज्योति हो गई। दिस इज बीइंग प्रोपेगेटेड एंड प्रभुपाद से दिस इज एब्सोल्यूट मायावाद, इसको हमें जो है निगेट करना है, इसको फेवर नहीं करना है। दिस इज रॉन्ग, दिस फिलॉसफी इज इनकम्प्लीट, दिस फिलॉसफी इज रॉन्ग। तो क्या कहते हैं, अतः प्रभुपाद द्वारा भागवत के संदेश को उपलब्ध बनाने का अर्थ केवल सरलीकरण नहीं था, इसका अर्थ पाठक को आवश्यक रूप से ज्ञान देना था कि वे माया के संसार को त्याग कर कृष्ण भावनामृत की शाश्वत मुक्ति को अपनाएं। प्रभुपाद सामान्य पाठक के लिए सुध्यात्मिक सत्य को उपलब्ध बना रहे थे, जो योग का कठिन अभ्यास करने वालों और संस्कृत में दक्ष विद्वान ब्राह्मणों के लिए भी क्यों सीक्रेट और अनुपलब्ध अनअवेलेबल था। प्रभुपाद उसे नई बोतलों में पुरानी शराब कहते थे। निराकारवाद के विरुद्ध वैष्णव तर्क की रूपरेखा माध्वाचार्य और रामानुजाचार्य ने तैयार की थी और बाद में उसे भगवान चैतन्य ने अचिंत भेदाभेद तत्व के दार्शनिक सिद्धांत का रूप दिया। इन शाश्वत सत्यों में प्रत्येक युग में प्रस्तुत किया जाना था, किंतु वैष्णवों और निराकारवादियों के बीच चलने वाले परंपरागत विवादों में वैदिक शास्त्र सदा ही प्रमाणिक बना आया था। इसी लोग जो है किस तरीके से बदल जाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं साहिबाबाद में लास्ट संडे की बात है लेक्चर दे रहा था, तो मेरे बहुत कुछ क्वेश्चन है किसी का, तो उन्होंने एक एक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा जी मुझे ये बताइए कि जब योग करना चाहे, भगवान तो हृदय में बैठे हैं, हमारा जब तो सदा चलता रहता, हमारा जब तो सदा चलता रहता है, भगवान तो हमारे हृदय में बैठे, हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है, तो फिर जप करने की क्या आवश्यकता है? आप कह रहे हो जप करना चाहिए, आप तो जप पे जोर दे रहे हो, भगवान तो यहां बैठे हैं। तब क्या कि जब भगवान हृदय में बैठे हैं तो जप करने की आवश्यकता क्या है? हम तो हमारा तो 24 घंटे जप चलता रहता है ऑटोमेटिकली। अब समझाना था उसको, मैंने कहा तो आप ये कहते हैं कि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं तो उनको पुकारने की आवश्यकता, जब से पुकार रहे हैं ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, और पुकार रहे, आवाज मुख से निकल रही है, मतलब शब्दों का प्रयोग हो रहा है। भगवान हृदय में बैठे हैं पर हम उनको पुकारना चाहते हैं शब्दों का प्रयोग करके। वे बैठे हृदय में तो पुकारने की क्या जरूरत है, वो तो हमारा जब तो चल ही रहा है जी, आपकी बात में समझ में नहीं आ रही।
यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. मैंने कहा एक बात बताओ, एक लड़के की प्रेमिका उसकी हृदय में बैठी है, दिल में बैठी हुई है ना, तो टेलीफोन करता नहीं करता उसको, पुकारता कि नहीं पुकारता, पुकारता कि नहीं पुकारता, शब्दों का प्रयोग करता कि नहीं करता. माता आपके दिल में बैठी है, आपको कष्ट होता है, मां पुकारती हो कि नहीं पुकारते हो, क्या बैठी है ना, खाना चाहिए, मम्मी खाना दो, मां खाना दो, पुकारते हो कि नहीं पुकारते हो. तो मैंने कहा जब हृदय में बैठे हैं भगवान तो उनको भी पुकारना है, अपने पुकारेंगे तो आएंगे, वो पुकारेंगे तो प्रसन्न हो, पुकारेंगे तो स्मरण होगा. अपने आप को स्मरण हो रहा है तो नहीं होता, कहानियां हैं, बेकार की बात है, यूजलेस है, भरोसा मायावादी है, ऐसा तर्क देते हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब आपका वैष्णव सिद्धांत फेल है, भगवान को तो पुकारना ही नहीं चाहिए, भगवान तो आपके हृदय में बैठे हैं. ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें लोग करते हैं. और ये बातें कहां से आ रही है, टीवी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कि लोग पेमेंट करके अपने प्रोग्राम चलवाते हैं. एवरी प्रोग्राम इज कमर्शलाइज एंड पेड, कि जो मैं बोलना चाहता हूं वो लोग सुने. आप सुनवाने का क्या लोगे ये बताओ, आपका रेट क्या है. पीपल पे, चैनल टेक्स मनी एंड देन उसको उन्होंने जो है टेलीकास्ट कर दिया. आंसर क्या है कि निराकारवाद, मायावाद जो है वो पूरे विश्व में इस वक्त नंबर एक पे फैला हुआ है. सिलेक्टेड से लोग हैं बड़े, जिसे कहते हैं डायमंड्स, जो कि वैष्णव सिद्धांत को मानते हैं, भगवान की सेवा में आते हैं और भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं. दे आर वेरी लिमिटेड. एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूं. किंतु आधुनिक समाज इतना गिर चुका था कि कोई उपदेशक वैदिक शास्त्र के प्रमाण की दुहाई नहीं दे सकता था, ना ही कोई इसे स्वीकार करता था. अतः शिल्प उपाध की कृतियों में ऐसे सिद्धांतों की चर्चा थी जैसे संयोग व जीवन की उत्पत्ति, डार्विन का विकास, रासायनिक विकास आदि. और उन्होंने अपने प्रखर तर्क के द्वारा इन सभी को हराया और प्रतिपादित किया. जीवन जीवन से आता है, मृत पदार्थ से नहीं. रोपवाद अपनी प्रथम कृतियों में से एक कृति, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सरल यात्रा, संसार के वैज्ञानिकों को समर्पित की थी. इस पुस्तक में उद्धृत गीता के श्लोकों को उन्होंने वैज्ञानिक शब्दावली में रूपांतरित करके उन्हें पदार्थ और प्रति पदार्थ का नाम तक दे दिया था. वैदिक निष्कर्ष की स्थापना के लिए उन्होंने शास्त्र और तर्क दोनों का प्रयोग दक्षतापूर्वक किया. इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, रोपवाद की ये जो है बुक थी, पढ़ी किसी ने, हाउ मेनी हैव रेड. तो इस पे हम जो है विश्वास करते हैं कि यस इट इज देयर एंड आई एम द वन हु हैज एक्सपीरियंस्ड इट. आई टोल्ड लास्ट टाइम आल्सो, मैं 13 जुलाई को ऊपर जाके लौट के आया. तो जो प्रभुपाद ने लिखा है that is truth, absolute truth as per shastras, and we have to believe it and we have to propagate it. Bhakti Madhura Swami se mera baat hua, unne kaha hum log to kehte hain ki sharir aur atma alag hoti hai, par tumne to prove kar diya ki sharir aur atma alag hoti hai. Yahi mandir mein khade hokar charcha ho rahi thi. To hame jo hai khas taur pe jo Prabhupad ki kritiyan hain unko padhna chahiye, understand karna chahiye. अगर उसमें कोई डिफिकल्टी आती है तो भक्तों के सहयोग से उसको समझना चाहिए. डिवोटीज आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, उनका सहयोग लें, उनसे समझिए, उससे जो है आपका भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और भगवान का स्मरण निरंतर होता रहेगा. हरे कृष्ण श्री गोपाल की बताएगा.